इनारा बॉस के सामने बैठकर खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जाते जाते वो खुद को ही कोस रही थी कि आखिर उसकी किस्मत ऐसी क्यों है। खाना खत्म करने के बाद उसे याद आया कि वो ऑफिस से कुछ फाइलें पढ़ने के लिए लेकर आई थी। वो कमरे में बैठना नहीं चाहती थी, बालकनी अभी तक उसने ठीक से सेट नहीं की थी और अब करने का भी मन नहीं था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसके बॉस तो इस समय लिविंग एरिया में बैठे हैं, इसलिए वो टेरेस पर जा सकती है। टेरेस पर जगह थोड़ी खुली थी और बैठने के लिए एक चेस्ट भी रखी थी, वहां बैठकर फाइल देखी जा सकती थी। वो फाइलें उठाती है और चुपचाप टेरेस की ओर बढ़ जाती है। जाने से पहले उसने झांक कर देखा, उसके बॉस अब लिविंग एरिया में नहीं थे, शायद वो किचन में थे। उसने देखा कि वो ओवन में खाना गर्म कर रहे थे। ये देखकर वो बिना किसी आवाज के बाहर निकल गई। टेरेस पर बैठकर उसने अपने फोन में पुराने गानों का हल्का सा म्यूजिक चला लिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत धीमे से बजने लगा। गाने की नरमी उसके मन की उलझन को कुछ पल के लिए थामे हुई थी। फिर वो खुद को फाइलों में डुबोने की कोशिश करने लगी। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि लिविंग रूम का दरवाज़ा खुला और ज्ञान बाहर आ गए। मगर इनारा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वो गाने को पूरी तरह इंजॉय कर रही थी और साथ साथ फाइल भी आराम से पढ़ रही थी। वो कुर्सी पर सिमट कर बैठी थी, पैर सामने रखी टेबल पर टिके हुए थे। ज्ञान कपूर कुछ पल वहीं खड़े उसे ध्यान से देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डाली, जैसे जानना चाह रहे हों कि शायद अब वो उठेगी। मगर इनारा तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। यही इनारा की खासियत थी, जब वो कोई काम करती तो पूरी तरह उसमें डूब जाती थी। वो काम बोझ की तरह नहीं बल्कि खुशी के साथ करती थी, जैसे इस वक्त वो गाने को भी महसूस कर रही थी और काम को भी। ज्ञान कपूर धीरे से कुर्सी खींचकर बैठने लगे। कुर्सी की हल्की सी आवाज़ हुई और उसी पल इनारा का ध्यान टूट गया। ओह सॉरी सर, कहते हुए वो एकदम से खड़ी हो गई। बैठ जाओ, ज्ञान ने शांत आवाज़ में कहा, ये कोई ऑफिस नहीं है। वो खुद भी वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गए। जी सर, इनारा ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। तुम काम करते हुए गाने सुन रही हो, ज्ञान ने पूछा। जी सर, गाने सुनने से पढ़ने में ध्यान लगता है, इसलिए, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। तो क्या तुम हमेशा से ऐसा ही करती हो? जी, स्कूल में भी कॉलेज में भी मैं ऐसे ही पढ़ाई करती थी। ये सुनकर ज्ञान कपूर कुछ पल के लिए खामोश हो गए। असल में कभी वो भी ऐसा ही हुआ करते थे कॉलेज के दिनों में, किताबें, म्यूजिक और घंटों की तन्हाई। मगर अब तो उनके पास किसी चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था। इनारा को खड़ा देखकर वो बोले, नहीं नहीं, खड़ी मत रहो, आप बैठिए सर, मैं अंदर जा रही हूँ, इनारा ने कहा। नहीं, ज्ञान ने उसे रोकते हुए कहा, तुम बैठ सकती हो, मैं तो बस तुम्हारे गाने की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया था। वो और कुछ नहीं बोले। इतना कहकर वो वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बैठने के बाद इनारा अपने कमरे में चली गई थी और जाकर सो गई। असल में अभी ऑफिस में उसके पास कोई खास काम नहीं था, मगर वो जानती थी कि आने वाले दिनों में काम बहुत बढ़ने वाला था। दूसरी ओर ज्ञान कपूर अभी तक किचन में ही थे। उन्होंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और फिर वापस अपने काम में लग गए। वो अक्सर आधी रात के बाद ही सोते थे, नींद उन्हें वैसे भी कम ही आती थी। उधर सानवी ने अभी तक किसी को ये बात नहीं बताई थी कि आर्यन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है। रेस्टोरेंट बंद करके जब वो घर पहुंची तो सीधे रिया और कृति को अपने पास बिठाया। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, सानवी ने कहा। क्या हुआ दीदी? कृति ने तुरंत पूछा। सानवी ने थोड़ा रुक कर कहा, आर्यन मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? रिया और कृति दोनों की आंखें चमक उठी। दीदी सच में मुबारक हो, कहते हुए कृति खुशी से शाम के गले लग गई। रिया भी मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। पहले मेरी पूरी बात सुनो, सानवी ने उन्हें शांत करते हुए कहा। मैंने उसे हाँ कह दी है। लेकिन? लेकिन क्या? कृति ने उत्सुकता से पूछा। बस मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, सानवी ने धीरे से कहा। घर पर मम्मी पापा से भी बात करनी होगी, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, कृति ने भरोसे से कहा। मैं उनसे इस तरह बात करूंगी कि आप देखती रह जाएं, मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ, कहते हुए वो सानवी के गले लग गई और रिया भी उसे थामे रही। सानवी ने रिया को पहले बता दिया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही है, मगर कृति को उसके बारे में नहीं बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, नकली शादी। कृति ने उसी रात अपनी मम्मी और पापा से बात कर ली थी। सुबह होते ही सानवी को उसके पापा का फोन आ गया। उस वक्त सानवी अभी सोकर उठी भी नहीं थी। कृति क्या बता रही है? उसके पापा ने सीधे सवाल किया। अगर वो तुम्हारा रेस्टोरेंट का पार्टनर है और तुम्हें पसंद भी है तो जब मैं पिछली बार आया था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पापा तब ऐसी कोई बात नहीं थी, सानवी ने धीरे से कहा। तो मतलब इतनी जल्दी तुम लोग शादी के लिए भी तैयार हो गए? फिर थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, कृति ने मुझे बताया है कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है और तुम्हें पसंद करता है। देखो बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी तुम लोगों से मिलने आएंगे, शादी की तारीख भी तभी फिक्स कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत फैसला करोगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। अपने पापा की बात सुनकर वो चुप हो गई। अब वो उन्हें कैसे बताती कि ये शादी असली नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। पापा, उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप मुझ पर यकीन करते हैं ना, मैं कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। शादी की डेट मैं आपको खुद बता दूंगी, आप उससे पहले आ जाइएगा। फिर उसने जल्दी से जोड़ दिया, वो बहुत बिजी रहते हैं, अभी विदेश जा रहे हैं, शादी से पहले ही लौटेंगे, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि अभी सब फॉर्मल बैठे कर सकें। फोन के उस तरफ उसके पापा ने गहरी सांस ली, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे बेटा, लेकिन शादी का सारा इंतजाम तो हमें ही करना चाहिए, हम लड़की वाले हैं। पापा, हम लोग सिर्फ कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, सानवी ने कहा, उसके बाद बस एक छोटी सी पार्टी होगी जो आर्यन देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके पापा कुछ कह पाते उससे पहले ही उसकी मम्मी ने फोन ले लिया। सानवी, ऐसी शादी थोड़ी होती है, मम्मी बोली, लड़का पसंद है तो हम आएंगे, मिलेंगे, तभी शादी की तारीख तय होगी। मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए, सानवी ने लगभग विनती के लहजे में कहा, अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो प्लीज जैसे ही तारीख फाइनल होगी मैं आपको बता दूंगी। कुछ पल की खामोशी के बाद मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी का लहंगा और ज्वेलरी मैं खुद बनवाऊंगी, कपड़े और गहने मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। फोन कटते ही सानवी ने राहत की सांस ली, कम से कम अभी के लिए। कृति ने इस तरह बात संभाल ली थी कि ज्यादा सवाल जवाब नहीं हुए और उसके दिल पर रखा बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। सुबह सुबह उनके घर पर बेल बजी, कृति ही गेट खोलने गई। दरवाजा खुलते ही वो मुस्कुरा उठी। स्वागत है मेरे होने वाले जीजू, कृति ने चहकते हुए कहा। सामने खड़े आर्यन ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा। मैं आप ही से कह रही हूँ, कृति हंसते हुए बोली। उसी वक्त रिया भी बाहर आ गई। आर्यन कृति की बातों पर अब भी थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था। तो तुम लोगों को सानवी ने नहीं बताया, आर्यन ने धीरे से पूछा। बताया है जीजू, कृति तुरंत बोली। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, वो थोड़ा झिझकते हुए आगे बोली। लेकिन दीदी की इसमें कोई गलती नहीं थी। फिर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि अब आप दोनों एक साथ हैं, कृति की बात सुनकर माहौल हल्का हो गया। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में एक ठहरी हुई सोच उतर आई।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें।